डाक बंगला कमलेश्वर 1962। कमलेश्वर द्वारा प्रणीत डाक बंगला उपन्यास नगरीय परिवेश की सुशिक्षित आधुनिक महिलाओं के जीवन की कतिपय विद्रूप विसंगतियों को उकारने वाला उपन्यास है। नगरीय जीवन में सामाजिक रक्षा कवच के तहत यहाँ अनेक भद्र संभ्रांत नारियां निरंतर मानसिक व्यभिचार करते हुए अपनी शारीरिक पवित्रता बनाए रखती हैं। वहाँ कुछ नारियां ऐसी भी हैं जो मन से किसी एक व्यक्ति को प्रेम करते हुए भी पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियों के दबाव में उन्हें अनेकों की आकांक्षायिनी होना पड़ता है। हिमांशु जोशी के छाया मत छूना मन की वसुधा, मेहरुनिसा परवेज के उसका घर की एलमा, निरुपमा सेवती के बढ़ता हुआ आदमी की सुनंदा, शशि प्रभा शास्त्री की नावे उपन्यास की मालती आदि इसके उदाहरण हैं। प्रस्तुत उपन्यास की ईरा भी इसी कोटि में आती है। पैराग्राफ चेंज। संक्षेप में ईरा के त्रासद जीवन की कहानी इस प्रकार है। इसकी माँ बचपन में ही काल कल्वित हो चुकी थी। पिता के आश्रय में पलने के कारण वह बहुत सी नियामतों से वंचित रह जाती है। माँ के प्यार के अभाव की पूर्ति वह बाहर करती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे लड़के और लड़कियां मानवीय संवेदना के भूखे होते हैं। अतः जहां भी उन्हें थोड़ा सा प्यार दिखता है, वे खिंचकर चले जाते हैं। मातृहीना ईरा के जीवन में कॉलेज के दिनों में विमल का प्रवेश इस रूप में होता है। दोनों नाटक के जीव थे, नाटक लिखते और खेलते थे। मुझे चांद चाहिए के हर्ष की भांति वह भी एक भावुक और प्रतिभाशाली युवक है। परंतु हर्ष जहाँ संपन्न परिवार से संबद्ध है, वहाँ विमल के सामने आर्थिक समस्याएं हैं। अर्थ के अभाव में उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। अतः ईरा मिस्टर बत्रा के यहाँ नौकरी कर लेती है। परंतु विमल भावुक होने के साथ साथ बेहद जिद्दी और शंकाशील भी है। मिस्टर बत्रा को लेकर वह हमेशा शंका कुशंका के कुहासे में घिरा रहता है और अंततः उसकी यह शंका ही उसे तथा ईरा दोनों को ले डूबती है। आबिद सूरती के एक उपन्यास में एक पात्र के द्वारा लेखक ने कहलवाया है, आवर डाउट्स आर ग्रेट ट्रेटर्स। और यहाँ ईरा को लेकर विमल के डाउट्स ही ईरा की जिंदगी को एक लक्ष्यहीन अंतहीन भटकन में छोड़ देते हैं। विमल बंबई जाकर जाली नोट बनाने वालों के षड्यंत्र में फंस जाता है और उसे 12 वर्ष की जेल हो जाती है। इधर ईरा मिस्टर बत्रा को न चाहते हुए भी उसके साथ रहने को विवश हो जाती है। मिस्टर बत्रा आधुनिक उपभोक्तावादी व्यापारिक समाज का प्रतिनिधि है। उसका व्यवसाय ही भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा है। किसी को लाइसेंस दिलाना, किसी का टेंडर पास करवाना, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाना आदि यही उसका काम है। इन कामों को कराने के लिए जो धृष्टता, कायापन और चलता पुर्जापन चाहिए वह उसमें है। हर बड़े अधिकारी की नब्ज को वह पहचानता है और उनकी कमजोरियों से लाभ उठाकर अपना उल्लू सीधा करता है। उसके दफ्तर में पहले सीला नामक एक युवती थी। जब ईरा से परिचय होता है तब सीला को दूसरे स्थान पर भेज देता है। विवाह न करने पर भी ईरा उसके साथ वैवाहिक संबंध रखती है। सेमल के लाल मांसल फूलों सा बच्चा प्राप्त करना ईरा के मातृत्व की ललक है और उसे मिस्टर बत्रा से गर्व भी रहता है। परंतु मिस्टर बत्रा इस लंद फंद में नहीं पड़ना चाहता। अतः ईरा को धोखे में गर्भ निरोधक गोलियां खिला देता है। ईरा का गर्भ गिर जाता है, उसका सपना टूट जाता है। मिस्टर बत्रा भी अब ईरा से उबने लगा है। अतः सीला को पुनः बुलाते हुए ईरा को नौकरी से निकाल देता है। तब आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से निराधार ईरा बूढ़े डॉक्टर चंद्र मोहन का पल्ला पकड़ती है। ईरा विमल तथा मिस्टर बत्रा जैसे पुरुषों के यौवन के उद्यम वेग को देख चुकी है। डॉक्टर चंद्र मोहन रेखा उपन्यास के प्रोफेसर प्रभा शंकर की भांति ईरा को संतुष्ट नहीं कर सकते। वे उसकी यौनाग्नि को शांत करने के स्थान पर भड़का देते हैं। उनके 2 बच्चों में वे अपना मन रमाने की चेष्टा करती है, परंतु डॉक्टर की हरकतों से उसे वितृष्णा होने लगती है। अतः वह कुछ दिन के लिए अपनी सहेली के पास नागपुर चली जाती है। इधर अकस्मात डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। ईरा बच्चों को संभालने का यत्न करती है और अपने ममत्व की पूर्ति उनमें करना चाहती है, परंतु उसकी यह इच्छा भी कारगर नहीं होती क्योंकि डॉक्टर की बहन जबरदस्ती उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है। डॉक्टर ईरा के लिए 15,000 रुपए छोड़ जाते हैं, जो एक प्रकार से ईरा को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। 15,000 की रकम हमें इस समय छोटी लग सकती है, परंतु यह ध्यान रहे कि उपन्यास जब लिखा गया था तब मध्यम वर्ग के हिसाब से उसे एक अच्छी मोटी बड़ी रकम समझा जाता था। पैराग्राफ चेंज। अपने जीवन में आने वाले 3 पुरुषों की कथा ईरा अपने सहयात्री एवं अंतरंग मित्र तिलक को कश्मीर यात्रा के दौरान सुनाती है। मेजर सोलंकी वाली घटना उपन्यास में घटित होते हुए बताई है। ईरा की कथा व्यथा से अभिभूत होकर तिलक उसे स्वीकारने को तैयार होता है, परंतु ईरा उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है क्योंकि वह समझती है कि सच्चा प्रेम सहानुभूति और दया से नहीं अर्जित हो सकता। वह पुरुष की उस मनोवृत्ति से भी परिचित है कि वह लाख आधुनिक एवं सभ्य होने का दावा करे, परंतु उसके अंतरतम में बैठा हुआ वह आदि पुरुष यह कभी गवारा नहीं कर सकता कि जिस स्त्री से वह जुड़ने जा रहा है उसके जीवन में वह प्रथम नहीं है। ईरा अपनी स्थिति को भली भांति समझती है। वह जानती है कि उसकी जिंदगी एक लक्ष्यहीन चिरपथिक की जिंदगी है। वह कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मेरा पड़ाव कहीं भी नहीं है। रास्ते में कोई गंदी चाय की दुकान आ गई तो लोग वहां भी रुककर एक प्याला पी लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ डाक बंगला कमलेश्वर, पृष्ठ संख्या 27। ईरा यह जानती है कि उसकी जिंदगी औरों के लिए पड़ाव मात्र, एक डाक बंगला मात्र बनकर रह गई है। उपन्यास का अंतिम वाक्य, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, चलो भाई सूटकेस चले, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 124, बहुत कुछ व्यंजित कर देता है। पैराग्राफ चेंज। तिलक और मेजर सोलंकी में से वह मेजर सोलंकी को पसंद करती है क्योंकि तिलक सिविलियन है और मेजर आर्मी मैन। ईरा अनुभव से यह जानती है कि ऐसे मामलों में आर्मी वाले सिविलियन से अधिक उदार होते हैं। सोलंकी के जीवन में आने के पश्चात ईरा का वह सेमल के लाल फूलों वाला सपना साकार होने लगता है, परंतु तभी जीवन के अंतिम पहर में उसका प्रथम प्रेमी विमल रुग्णावस्था में मिलता है। अपने अरमानों का गला घोटकर वह मेजर सोलंकी को छोड़ विमल के साथ चल पड़ती है, जो कुछ ही दिनों का मेहमान है, अतः वह भी उसे सदा सदा के लिए छोड़कर चला जाता है। इस उपन्यास का एक संकेत यह भी है कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी या दुर्घटना यही है कि हमें हर चीज, हर सुख मिलता है पर समय पर नहीं। इस संदर्भ में डॉक्टर पारुकांत देसाई का यह कथन उल्लेखनीय रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ईरा के जीवन की त्रासदी भी यही है। काश उसे विमल 2 या 3 वर्ष बाद मिला होता। काश बत्रा की जिंदगी में वह 15 बरस पहले आ गई होती। काश डॉक्टर से उसकी मुलाकात 20 वर्ष पहले होती, या काश तिलक उसे पहले मिलता, तब उसके जीवन को कोई अर्थ मिल पाता। यहाँ ईरा को केवल निरर्थक प्यार ही मिला। उसकी जिंदगी महज एक डाक बंगला बनकर रह गई। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ 68 हिंदी उपन्यास डॉक्टर पारुकांत देसाई, पृष्ठ संख्या 137-138। पैराग्राफ चेंज। ईरा अपने इस प्रकार के जीवन के लिए खुद भी जिम्मेदार है क्योंकि वह ऊपर से जितनी निसंकोच, मुक्त, निबद्ध दिखती है, शायद अंदर से उतनी ही संकोचशील, परंपरानुगामी और भीरू भी थी। उसके स्वानुभावों द्वारा यह स्वीकार कर लिया था कि दुनिया का विधान ही कुछ ऐसा है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यह औरत बगैर आदमी के रह ही नहीं सकती, चाहे उसके साथ उसका पति हो या भाई या बाप। कोई ना हो तो नौकर ही हो, किसी भी आदमी की आड़ में, चाहे वह आदमी काट का ही हो। अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी जिंदगी शान से चल सकती है, पर बगैर आदमी के न वह अच्छी जिंदगी जी सकती है और न बुरी। इसीलिए हर लड़की एक कवच ढूंढती है, उसे पहनने के लिए जैसे एक साड़ी चाहिए वैसे ही यह कवच भी चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ डाक बंगला पृष्ठ संख्या 46-47 पैराग्राफ चेंज। इस कवच की चाह ही ईरा को आजीवन भटकाती है। बचपन में ही माँ का साया सिर से उठ चुका था, पिता अक्सर दौरे पर रहते थे, नौकरानी के भरोसे पली बड़ी ईरा में बचपन से ही सुरक्षा और प्यार का अभाव पनप रहा था। यह अभाव विमल की संगति से पूरा हो सकता था, किंतु उसकी संकालु वृत्ति ने ईरा की जीवन धारा ही बदल दी। इसके बाद एक के बाद एक पुरुष ईरा की इसी सुरक्षा और प्यार की भूख को उकसाता रहा और कमजोर मन वाली ईरा सबकी खिलौना बनती चली गई। पैराग्राफ चेंज। इधर पेड वाइफ का जीवन जीने वाली शीला अपनी बहनों और माँ को बचाकर किसी प्रकार भारत ला सकी थी। इस बीच आर्थिक कठिनाइयों ने उसे शरीर व्यापार करने पर विवश कर दिया। वह माँ से बहाना बनाती है कि उसकी नौकरी दौरे पर रहने की है। पृष्ठ संख्या 136। घर से चार चार छः छः महीने बाहर रहकर कोई अन्य नौकरी नहीं करती, बल्कि अलग अलग जगह अलग अलग आदमियों की बीवी बनकर रहती है जब तक वे चाहते हैं। इसके बाद आदमी की इच्छा होती तो वह उसे विदा दे सकता है। कुछ दिन बाद चाहने पर पत्नी की भूमिका निर्वाह करने फिर से आ सकती है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। वह हर घर में बीवी का नकाब लगा कर रहती है और घर का इस तरह ध्यान रखती है जितना कि बीवियां भी नहीं रख सकती। अपनी शारीरिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का यही साधन है उसके पास। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 65। शीला धनाबे के लिए यह सब करती है और न उसे अपने जीवन के प्रति कोई असंतोष का भाव है, क्योंकि उसने स्वेच्छा से यह जीवन अपनाया था। पैराग्राफ चेंज। ईरा की जिंदगी में भी चार पुरुष आते हैं, परंतु उसे हम हरजाई और कुलटा नहीं कह सकते, क्योंकि वह परिस्थितियों द्वारा सताई गई एक स्त्री है। उसके मन में स्वयं को लेकर गहरा पश्चाताप और निराशा है, क्योंकि जैसा जीवन उसे मिला है वैसा उसने कभी भी नहीं चाहा है। रेखा उपन्यास की रेखा भारद्वाज तथा किस्सा नर्मद बेन गंगूबाई की सेठानी नर्मदा बेन तथा इमरतिया की गौरी विपुल वासना वृत्ति वाली स्त्रियां हैं, और अपनी वासना पूर्ति के कारण ही वे नए नए पुरुषों की टोह में रहती हैं। उनकी यह वासना यौन अतृप्ति से उत्पन्न यौन बुभुक्षा के कारण है। ऐसी स्त्रियों को मनोविज्ञान की भाषा में निम्फो कहते हैं। ईरा निम्फो नहीं है, उसकी यह स्थिति सामाजिक पारिवारिक आर्थिक निराधरता के कारण है। ईरा की व्यथा को पढ़कर निम्नलिखित काव्य पंक्तियां स्मृति में कौंध जाती है। दहाड़ता है क्रूर काल हो के मन चला, अय जिंदगी क्या कहूं हर दफे छला। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ मिलन के क्षण चार डॉक्टर पारुकांत देसाई पृष्ठ संख्या 60।